मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 13 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी सुनील कुमार का जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत में मांग में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने अभी जो कुछ कदम उठाए हैं उसको आधार बना करके इससे जुड़े हुए कुछ और जो दूसरे तथ्य होते हैं, यूं कह लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ एक दो दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। नोबल प्राइज के बारे में अखबारों में आपने पढ़ा ही कि अर्थशास्त्र का जो नोबल प्राइज है वह भी घोषित कर दिया गया है और यह जो नोबल प्राइज है वो उसको पाने वाले जो अर्थशास्त्री हैं दोनों मित्रों अमेरिका के हैं और उनके नाम हैं पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। अपने दिमाग में इन नामों को टिकाए रखने के लिए बस दो शब्द आप या पढ़ लें याद कर लें तो बहुत है, मिलग्राम और विल्सन, इन्हें नोबल प्राइज दिया गया है। किस बात के लिए दिया गया है, यानी ये बहुत ही सरल सी बात याद रखने की दृष्टि से, चूंकि अर्थशास्त्र का विषय है तो थोड़ा सा सरल भी होता है। इन्हें इस बात की आपको मालूम है कि नीलामी होती है ना, ऑक्शंस होते हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, माइंस की नीलामी हो रही है ना, इस तरह के आप सुनते रहते हैं नीलामी। सामान्य तौर पर भी शहरों में किसी चीज़ की नीलामी होती रहती है, सड़ी गली लकड़ियों की नीलामी होती रहती है, सरकारी गोडाउन में चीज़ें होती हैं उनकी नीलामी होती रहती है, ऑक्शन होते रहते हैं। तो इनफैक्ट इन्होंने कुछ भी नहीं, जो ऑक्शन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ सुधार किया, कुछ नई थ्योरीज दी, और उन्होंने जो थ्योरीज दी थी बकायदे अमेरिका में बहुत से जो संस्थाएं हैं जो प्राधिकरण हैं उन्होंने उसका उपयोग भी किया, उन्हें वो सिद्धांत बहुत अच्छे लगे, फायदेमंद लगे। और जब अमेरिका में यह सिद्धांत धीरे धीरे स्थापित होने लगा तो फिर दूसरे लोगों ने भी, दूसरे देशों ने भी उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर यह कि इन्होंने नीलामी के नए प्रारूप की स्थापना की है और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए इससे सभी को लाभ होता है, जो नीलाम कर रहा है उसको भी लाभ हो रहा है, जो नीलामी में बोली लगा करके सामान खरीद रहा है उसको भी लाभ हो रहा है और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको भी लाभ होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार के बारे में। खबरों में आज आपने अखबार में एक शायद खबर पढ़ी हो, सभी अखबारों ने इसे कवर नहीं किया है, और वो ये है कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, फिल्म निर्माता कह लीजिए मिलकर के, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने बकायदे जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके खिलाफ एक याचिका दायर की है। याचिका इस बात को लेकर के है कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये खासकर बॉलीवुड, जिसे बॉलीवुड ही कहते हैं, मुंबई का जो फिल्म जगत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब से सुशांत सिंह जी के आत्महत्या का मामला जब उछला और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह से ये सब, जब इसकी जांच होने लगी तो धीरे धीरे ये मामला फिर ड्रग्स की ओर चला गया। तो जब सुशांत जी की हत्या, आत्महत्या की बात हो रही थी तो उस समय पूरे के पूरे बॉलीवुड के सामने जो भाई भतीजावाद है इसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, ढेर सारी बातें वहां से उभर करके आ रही थी। और इसके बाद जब ड्रग्स का मामला आया तो फिर इस तरह की बातें की जाने लगी मानो कि जो पूरा का पूरा बॉलीवुड है वो ड्रग्स में डूबा हुआ है, और यहां तक कि गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बॉलीवुड के लिए गंदगी शब्द, कूड़ा करकट शब्द, ड्रग एडिक्ट्स जैसे शब्द किए हैं कि बॉलीवुड में तो इतनी गंदगी फैली हुई है कि उसको साफ करने की जरूरत है, और अरब देश का अगर सभी इत्र भी ला करके उसे डाल दिया जाए तब भी उस गंदगी की बदबू को दूर नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें कही गई और इसके आप बहुत अच्छी तरह से साक्षी हैं भी। तो इनकी जो मांग है वो ये है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और उन्होंने बकायदे दो कोट किए हैं और मुझे लगता है कि यह आपको, आपकी जानकारी में होना चाहिए। देखिए मीडिया जो है एक्सक्लूसिव तरीके से आपके सिलेबस में है, अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे तो मीडिया से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया शक्तिशाली होता जा रहा है और अभी तो मीडिया थोड़े से विचार विमर्श के केंद्र में भी रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी जो मेंस होने हैं उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो बस आप केवल इस रेफरेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें और यदि आपके लिए संभव हो तो नोट भी कर लें। जो केबल टीवी जो नेटवर्क है उसी का एक्ट है, उन्होंने खुद बनाया है। उसका जो सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 में यह कहा गया है कि केबल टीवी पर कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम कोड के तहत प्रसारित होना चाहिए, है ना। उन्होंने संहिता बना रखी है। और आपके जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है मेंस का, देखिए उसमें आचरण संहिता की बात कही गई है। आचरण संहिता, नैतिक संहिता, एथिक्स की भी बात कही जाती है और बकायदे इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना। प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, डॉक्टर्स के अपने एथिक्स होते हैं, सिविल सर्वेंट के अपने एथिक्स होते हैं, है ना, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। तो केबल नेटवर्क के भी अपने एथिक्स हैं। तो सेक्टर आपके सेक्शन 5 में यह कहा गया है कि जो भी कार्यक्रम प्रसारित हो वो कोड के तहत हो, और फिर जो प्रोग्राम कोड का नियम 6 है उसका अगला, उसके तहत ये बात कही गई है कि जो कार्यक्रम प्रसारित हो वे अभद्र नहीं होने चाहिए, न ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी को टारगेट करने वाला हो कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी की मानहानि करना चाह रहे हैं, और न ही आप इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करें जिससे कि समाज का केवल आधा सच ही दिखाई दे, आधा आप जानबूझकर के छुपा लें और समाज की जो छवि है या समाज में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी जो छवि है वह नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, उसको नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बातें कही गई हैं। मुझे लगता है कि एक घटना थी जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना ही चाहिए ताकि इस विषय को आप अपडेट कर सकें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है मांग में वृद्धि। मैं आपसे मांग में वृद्धि के बारे में कोई बात नहीं करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, अभी मुझे बहुत सारे मेल मिले हैं। उस मेल में दो बातें ऐसी लिखी गई हैं, दो तरह के मेल जो आए हैं, जिनसे सच पूछिए मेरा और एकेडमी की जो हमारी टीम है उसका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहला मेल इस तरीके का है कि सर, जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं उन लेक्चर्स से जो सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उस अंडरस्टैंडिंग के कारण हमें अभी जो प्री एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत मदद मिली, और इसके लिए मैं आपका और AFEIS की पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, हम कहते नहीं हैं कि आप मेल लिखिए, लेकिन वो लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सच्चाई का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी सच्चाई पर कोई शक भी नहीं किया जाना चाहिए। जो दूसरे तरह के जो मेल हैं उसमें कुछ मेल ऐसे आए हैं जिनकी संख्या काफ़ी है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सर, मैं पिछले 1 साल से 2 साल से आपका डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहा हूं और ऑडियो लेक्चर सुनने के बाद करंट अफेयर्स से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसने अभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से मेरी मदद की है। दोस्तों, ये दोनों बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? शेयर करने के पीछे मेरा एक बहुत ही ईमानदार कारण है। वो ईमानदार कारण ये है कि सामान्यतः सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, स्ट्रेट तरीके से कहना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं, स्ट्रेट तरीके से कोई भी एक टॉपिक बता दिया जाए। जैसे मांग में वृद्धि, तो मैं स्ट्रेट तरीके से बता दूं कि मांग क्या होती है, मांग में वृद्धि कैसे की जाती है, मांग में वृद्धि होने के क्या प्रभाव होते हैं, बात खत्म हो जाती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि कोरोना के समय में, उससे पहले भी और उसके बाद में भी, सरकार जब भी कोई अपने आर्थिक उपाय नीति इस तरह की घोषणा करती है तो मैं स्पेशली आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज इसके माध्यम से आप अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कीजिए। अर्थशास्त्र को आप किताब से नहीं समझ सकते, किताब से आप अपना थोड़ा सा बेस बना सकते हैं, यानी समझने के लिए वहां से कुछ टूल्स ले सकते हैं। समझना आपको अखबार, मैगजीन्स और इस तरह के लेक्चर्स से ही होगा, तभी आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें कि अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे पास डी सेट है, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर का सेट डी, उसका 90वां प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि, कितना व्यावहारिक प्रश्न है आप देखिए, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते ब्रैकेट में दिया डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1,00,000 रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति यानी कि मांग और सप्लाई, फर्क बस यही है कि यहां जो मांग और सप्लाई का संबंध है वो मुद्रा से है, वस्तु से नहीं है, लेकिन है तो सिद्धांत मांग और सप्लाई का ही। और इसके बाद फिर उन्होंने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों वो चार ऑप्शंस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि हम बहुत विस्तार से जा सकें। आप अगर चाहें तो आप बकायदे इन चार ऑप्शंस को देख सकते हैं, और चार ऑप्शंस को देखने के बाद आप इसका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको यह उत्तर खुद ढूंढना चाहिए। और इसका उत्तर आप ढूंढेंगे कैसे? जैसे सरकार ने आज बहुत सी घोषणाएं की हैं, है ना, लगभग 73,000 करोड़ रुपए वो चाह रहे हैं कि बाजार में पहुंच जाए। जब बाजार में पहुंच जाए मतलब हम लोगों के, नागरिकों के हाथ में वो पैसा आ जाए। जब नागरिकों के हाथ में पैसा आएगा तो उसका क्या करेंगे? वो सामान खरीदना शुरू करेंगे, यानी कि डिमांड जनरेट होगी। जब सामान खरीदना शुरू करेंगे तो सामान का उत्पादन शुरू होगा, तो इस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि हम अभी सुस्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हैं ड्यू टू कोरोना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। और इसके लिए क्या क्या किए गए हैं, सरकार ने क्या LTC के लिए व्यवस्था की है और कैसे क्या किया है, वो बकायदे अखबारों में छपा है। तो आपको चाहिए कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं उन एक एक कदमों को ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद उन्हें समझने की कोशिश भी करें। और अगर कल आपने दूरदर्शन का चैनल देखा हो तो उसमें हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं सुब्रमण्यम जी, उनसे बहुत अच्छी बातचीत की गई है। और बकायदे जो हमारे न्यूज एंकर है, न्यूज रीडर, उन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और उन्होंने विस्तार से बताया है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। उसी के तहत कुछ बहुत अच्छे शब्द भी आए हैं जिन पर बेस करके बकायदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूंजीगत व्यय, जैसे सरकार ने कहा है कि वो 12,000 करोड़ रुपए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के लिए देगी और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो अब आप उसको पढ़ लीजिए सीधे सीधे, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि भई ये पूंजीगत व्यय होता क्या है। जब आप पूंजीगत व्यय के बारे में जानना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि यार ये राजस्व व्यय फिर क्या होता है। और जब आप बजट के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इन दोनों की बकायदे आपको उल्लेख मिलता है कि पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, राजस्व आय क्या है। तो जब तक ये बातें आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएंगी तब तक आप न तो प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन तक, उनके सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, और इनफैक्ट न ही मेंस में जिस तरीके से इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही अप्लाइड किस्म के, बहुत ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों यहां खासकर मेरा जो मकसद था इस साल के पेपर में पूछे गए प्रश्न के माध्यम से आपके सामने विश्वास दिलाने के लिए वह तथ्य लाना था कि इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए अगर सच में आप सफल होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, योगिता दिल्ली से, डॉक्टर शशांक और सुनील गुप्ता, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।